सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अमल होगा। तृप्तिदि प्रकरण में ये विचार कर रहे थे, चिदाभास में क्या है, ज्वर संभव नहीं है। किसके बिना? तो कहते हैं स्वतः उस चिदाभास में ज्वर नहीं है। यदि वो चिदाभास शरीर त्रय के साथ संबंध करेगा अर्थात तादात्म्य करेगा, तभी क्या है उस चिदाभास में ज्वर की संभावना रहती है, ज्वर का अनुभव क्या होता है। यदि वो संबंध करेगा तो, तादात्म्य करेगा तो, कौन? चिदाभास। तो वो चिदाभास किसका प्रतिबिंब है? कुटस्थ का। यदि चिदाभास बिना तादात्म्य से क्या है शरीर के संताप से रहित होता है, तो जो तादात्म्य करता ही नहीं है, कौन? चिदाभास का जो बिंब रूप कुटस्थ, वो तो कभी तादात्म्य करता ही नहीं है, तो उसमें शरीर त्रय का ज्वर संभव है क्या? नहीं है। ये कैमुतिक न्याय है, अर्थात जब चिदाभास में ही संभावना नहीं है तो वो चिदाभास का जो बिंब उसमें संभावना नहीं है। तो ये दिखा करके ये बताया कि वास्तविक रूप से चिदाभास में भी संताप नहीं है, ज्वर नहीं है। कब नहीं है? जब वो तादात्म्य नहीं करेगा तब। तादात्म्य करेगा तो कुछ देर के लिए वो जरूर क्या है ज्वर प्रतीत होगा, संताप प्रतीत होगा। जैसे जल अग्नि के साथ है, जब तक तादात्म्य करेगा तब तक क्या है वो गर्म महसूस होने लगेगा, अर्थात अग्नि का ताप उसमें महसूस होने लगेगा। स्वयं जल ही क्या है ताप के रूप में प्रतीत होने लगता है, और वो तादात्म्य हट जाए तो फिर ठंडा है। मतलब वास्तविक उस जल में जो तपन है वो वास्तविक नहीं है। वो क्यों है? जल ने अग्नि के साथ क्या तादात्म्य किया, संबंध किया, इसलिए है। तो उस तपन को जल का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक प्रकृति स्वभाव नहीं माना जा सकता, और जो वास्तविक नहीं है वो रहता भी नहीं है, वो बस कुछ काल के लिए रहता है। यहां पर भी इसी तरह जब तक चिदाभास का शरीर के साथ संबंध है अर्थात तादात्म्य है, तादात्म्य का मतलब शरीर को ही अपना स्वरूप मानना, अंतकरण को ही अपना स्वरूप मानना, मैं ही मन हूं, अर्थात अंतकरण के धर्मों को अपना स्वरूप मान लेना, शरीर को अपना स्वरूप मानना, अथवा ये मेरा है ऐसा मानना, ये मैं हूं अथवा ये मेरा है। तो इस तरह का जो तादात्म्य जब होता है तब क्या होता है उसका ताप, उसका जो ज्वर प्रतीत होने लगता है। इसलिए ये बात बताई कि जो चिदाभास स्वतः उसमें शरीर त्रय का ज्वर संभव नहीं है। कब संभव है? तादात्म्य करने के बाद। इसका अर्थ ये होता है कि पहले उस चिदाभास में ज्वर नहीं था, तादात्म्य करने के बाद क्या है आ गया। वो कब तक रहेगा? जब तक तादात्म्य रहेगा तब तक। तादात्म्य हट जाएगा तो ज्वर हट जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को मार लग गया शरीर पर अथवा एक्सीडेंट हो गया, अब पीड़ा बहुत हो रही पैर में अथवा हाथ में, मार लग गया, अब उसको लिटा दिया और दवा दे दी और क्या हो गया, वो सो गया। अब सो गया तो आखिर वहां क्या हो रहा है सोने में, सोने में आखिर हुआ क्या, तादात में छूट गया, इसलिए वहां पर दुख की प्रतीति नहीं है। मतलब जब तक तादात में तब तक दुख की प्रतीति है, तादात में हटते ही दुख की प्रतीति समाप्त है, इसलिए वो दुख उस चिदाभास का वास्तविक स्वरूप नहीं है, अर्थात वो चिदाभास का वास्तविक है ही नहीं है वो, इसलिए इसी को क्या है दृष्टांत लेकर के युक्ति दे करके ये समझा रहे हैं कि जब चिदाभास में ही दुख नहीं होता है तो उस चिदाभास का जो बिंब, चिदाभास क्या है प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब में ही क्या है वास्तविक दुख नहीं है। तो जो बिंब की जो क्या है शरीर त्रय के साथ उसका किसी प्रकार का संबंध कभी भी नहीं है, तीनों काल में नहीं है, ऐसी कुठस्थ में ज्वर कैसे संभव हो सकता है, अर्थात संभव नहीं है। अर्थात उस कुठस्थ में क्या है ज्वर नहीं रहता है ऐसा कहना बनता नहीं है। तो फिर कह दिया कि इस चिदाभास में जो ज्वर प्रतीत होता है वो तो क्यों होता है, तो ये बताया वो तादात में करता है अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण वो एकता को प्राप्त हो रहा है, अर्थात शरीर त्रय के साथ वो एक हो रहा है, एक होने के कारण क्या है वो अनुभव हो रहा है उसको। तो उसी का विस्तार करके बता रहे 31वें श्लोक के द्वारा, एकताम मेने इति संक्षेपेण उक्तार्थम प्रपंचयति। वो जो एकताम मैंने जो तादात्म्य करके क्या है वो अपने आप को ये जान रहा है कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ तादात्म्य किया चिदाभास ने, जैसे शरीर के साथ तादात्म्य किया चिदाभास ने तो वो अपने आप को शरीर के रूप में वो मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, अमान करके चलता है वो। अब इस बात को समझा रहा है कैसे कैसे मान लेता है वो, साक्षी सत्यत्वम अध्यस्य साक्षी सत्यत्वम अध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये स्वेनोपेते वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते स्वरूपमिति मन्यते साक्षी सत्यत्वं अध्यस्य स्वेन उपेते वपुस्त्रये, अर्थात तीनों शरीरों में क्या करता है वो चिदाभास, अपने आप अपने को लेकर के अपने सहित कूटस्थ को भी क्या करता है वो साथ में लेता है, अर्थात कूटस्थ की जो सत्यता उस सत्यता को लेता है अपने सहित, कूटस्थ की सत्यता को लेकर के उन तीनों शरीर में क्या करता है तादात्म्य करता है। मतलब मैं शरीर हूं तो हूं, जैसे घट है पट है मठ है चट है ये किसका है कूटस्थ का चैतन्य का, तो ये जो सबके साथ है जुट रहा है ना, ये सत्ता की है, सत्ता किसकी है कूटस्थ की, किंतु हमने क्या कर दिया कूटस्थ को भुला करके हमने किसको है कह दिया घट है कह दिया, जिसकी सत्ता में उसको तो हम भूल गए और हम किसको मान रहे घट को मान रहे, तो घट है चैतन्य है ये नहीं है, घट है। तंतु की जगह किसको कह रहे हम, पट है। वास्तविक पट है क्या, तंतु है, तंतु है, किंतु क्या कह दिया, पट है। मतलब उसकी सत्यता को हम छुपा दिया, भूल गए। इसी तरह यहां पर भी चिदाभास क्या कर रहा है, उस साक्षी की सत्यता को लेकर के अपने सहित इस शरीर में तादात्म्य कर रहा है। तादात्म्य करके क्या कहता है, मैं शरीर हूं, मुझे खाने पीने के लिए चाहिए, बुखार आ गया मुझे बुखार आ गया, है ना, कुछ अप्रिय घटना हो गई, मेरा अपमान हो गया, तो मान अपमान किसका धर्म है, अंतकरण का धर्म है, बुखार आना किसका धर्म है, शरीर का धर्म है। किंतु किसको कह रहा है वो, मुझे बुखार आ गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा मान हो गया, और किसी ने कुछ पूछ दिया नहीं आया, अरे महाराज तो हम तो अज्ञानी हैं। मतलब क्या किया, शरीर त्रय को अपने में आरोपित किया, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य है, उसके साथ एक ही भाव हो गया। एक ही भाव होने के कारण उसके स्वरूप को ही अपना स्वरूप वो समझ रहा है। जब उसके स्वरूप को अपना स्वरूप मानेगा तो उसका जो भी कुछ हलचल है वो इसमें प्रतीत होने लगती है। उसमें जो भी घटना है उस घटना को अपने स्वयं के रूप में अनुभव करता है। शरीर जोर से तप रहा है तो वो अपने आप को जो तपी हुई के रूप में महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य है। साक्षी सत्यत्वम अध्यस्य स्वेन उपेते वो पुस्त्रये, इन तीनों शरीर में क्या है, अपने साक्षी के सहित क्या करता है वो, अध्यास करता है तीनों शरीर में। तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूप इति मन्यते, जब उस तादात्म्य करता है तीनों शरीर में उस साक्षी की सत्यता को लेकर के, तो होता क्या है फिर उसका परिणाम, ये तीनों शरीर को अपना ही स्वरूप मान लेता है, ये मैं हूं करके। जब मैं हूं ऐसा मानेगा तो जब शरीर मैं हो गया तो जो बुखार किसका हो गया, फिर मेरा ही हो गया। मान हो गया तो किसका हो गया, मेरा हो गया, ऐसा मान लेता है। अपमान होगा तो किसका होगा, तो मेरा अपमान हो गया, क्योंकि वो स्वरूप ही मेरा है ना, अंतकरण को ही मेरा स्वरूप मान लिया, शरीर को ही मेरा अपना स्वरूप मान लिया, तो जो शरीर में होगा वो हमें ही प्रतीत होगा। तो इस तरह से क्या है वो, जब इन तीनों शरीरों में तादात्म्य करता है तो ये क्या है, ज्वरामि, मैं क्या है, पीड़ित हूं, मैं अपमानित हूं, मैं अज्ञानी हूं, इस तरह बोलने लगता है लोगों में। टीका देख लीजिए, साक्षी इति चिदाभास स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षीगतम सत्यत्वम अध्यस्य चिदाभास स्वेन सहिते, अपने सहित चिदाभास क्या करता है, इन तीनों शरीरों में जो साक्षी में, साक्षीगतम सत्यत्वम, साक्षी में रहने वाला जो सत्यत्व है, उस सत्यत्व को क्या है, अध्यस्य, उसका अध्यास क्या है, किसमें, तीन शरीरों में अध्यास कर रहा हूं। तत्सर्वम ज्वर शरीरत्रयम स्वस्य वास्तवम रूपमिति मन्यते, वो शरीरादियों का ज्वर अपना ही क्या है, वो स्वरूप मान लेता है, अध्यास करके, ये मैं हूं करके। इत्यर्थ एवं भ्रांति ज्ञाते सती किम भवती, चलिए मान लीजिए भ्रांति हो गई, क्या भ्रांति हो गई, कि मैं शरीर हूं, ये मान लीजिए भ्रांति हो गई, तो इस भ्रांति होने का परिणाम क्या भाई, क्या होता है, भ्रांति होने दीजिए, क्या समस्या है, मैं शरीर हूं होने दीजिए, क्या दिक्कत है, तो बता रहे इसे होता क्या है, एवं भ्रांति ज्ञाने सती किम भवती, ये भ्रांति ज्ञान होने पर क्या होता है, इत्यत आह, उसको कह रहे क्या होता है बताते हैं 32वें श्लोक के द्वारा। एतस्मिन् भ्रांति कालेयम् एतस्मिन् भ्रांति कालेयम् शरीरेषु ज्वरत्स्वतः स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत् तो कहते हैं जब ये भ्रांति काल में ये शरीर मैं हूं, जो बोलता है ना कि ये शरीर मैं हूं, तादात्म्य कर लेता है, उसके साथ एक ही भाव हो लेता है, यही मैं हूं, ऐसा जब भ्रांति हो जाती है, ऐसे भ्रांति काल में क्या होता है? तो कह रहे एतस्मिन् भ्रांति काले, इस भ्रांति काल में अयम शरीरेषु ज्वरत् स्वतः। ये भ्रांति काल में क्या होता है? उस शरीर में रहने वाला ज्वर वो अपने आप में अनुभव करता, यही होता है। क्या होता है? भ्रांति काल में ये शरीर मैं हूं, जैसे ही वो मान लेता है तो उस शरीर में रहने वाला ज्वर अपने में अनुभव करता है। वो ये नहीं कहता है शरीर को बुखार आ गया, ये नहीं कहता है। क्या कहता है? मुझे बुखार आ गया। ये नहीं कहता है कि मेरे मन को अपमानित किया, वो कहता है तुमने मेरा अपमान किया। वो ये नहीं कहता है कि इसमें शरीर में क्या है, अज्ञान है, वो सीधा कहता है मुझ में अज्ञान है। माने उनमें रहने वाले जो ज्वर है वो सीधा सीधा अपने में अनुभव करता है, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य करने के कारण। स्वयं एव ज्वरामि इति मन्यते। क्या कहता है? मैं ही तप रहा हूं, मैं ही सुखी दुखी हूं, मैं ही अज्ञानी हूं। कैसे मानता है, कैसे कहता है वो? तो जैसे कुटुंबी बात, एक अज्ञानी जो कुटुंबी अर्थात परिवार वाला व्यक्ति, जिसको किसी प्रकार का आत्मस्वरूप विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो जब अपना यदि हाथ टूट जाता है तो कहता है मैं कैसा हो गया हूं, मैं विकलांग हो गया हूं, मैं लुड़ा हो गया हूं, मैं पैर टूट गया, मैं लंगड़ा हो गया हूं, आंख गई तो मैं अंधा हो गया हूं, अथवा यहां तक जाता है, मान लीजिए घर जल गया, मैं खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया? घर। अब क्या कह रहा है? मैं खत्म हो गया। एकलौता पुत्र था, मान लीजिए चला गया, क्या हो गया? मैं खत्म हो गया। मान लीजिए दो पुत्र है, एक पुत्र चला गया तो क्या कहेगा? मेरा एक दाहिना हाथ चला गया, दूसरा गया तो कहता मेरा बायां हाथ भी चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? ऐसा आरोप कर रहे हैं ना। जैसे एक परिवार वाला अज्ञानी व्यक्ति वो जैसे कहता है वैसे ये चिदाभास भी कहने लगता है। कब? तीनों शरीर के साथ जब तादात्म्य करता है। माने कुटुंबी वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का दृष्टांत दे करके ये चिदाभास इस तरह बोलने लगता है, दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। टीका देख लीजिए। एतस्मिन् इति अयम् चिदाभासः अस्याम् भ्रांति वेलायाम् शरीर निष्ठम् ज्वरम् स्वात्मनि आरोपयति इत्यर्थः। ये जो चिदाभास है अस्याम् भ्रांति वेलायाम्, इस चिदाभास को भ्रांति काल में क्या है? शरीर निष्ठम अर्थात शरीर में रहने वाला क्या ज्वरम्, उस ज्वर को क्या करता है, स्वात्मनी आरोपयती, शरीर के ज्वर को अपने में आरोपित करता है। हो गया ज्वर शरीर को और कहता है मुझे ज्वर हो गया है, ऐसा वो क्या करता है, अनुभव करने लगता है। तो ये कैसे अनुभव करता है, इसमें कोई दृष्टांत है क्या, तो कहते हैं तत्र दृष्टांतम आह, दृष्टांत है कैसे, कुटुंबीवत इति, एक पारिवारिक व्यक्ति जिसके सहारे वो अपना जीवन चला रहा था, वही यदि जब चला जाता है तो सीधा कहता है कि मैं खत्म हो गया, अब मेरा कुछ बचा नहीं है। इसी तरह ये चिदाभास भी कहने लगता है, दृष्टांतम विशदयति। अब इस दृष्टांत को विस्तार करके बताते हैं। पुत्रदारेषु तप्यत्सु, पुत्रदारेषु तप्यत्सु, तपामीति वृथा यथा, तपामीति वृथा यथा, मन्यते पुरुषास्तद्वत्, मन्यते पुरुषास्तद्वत्, आभासोप्यभिमन्यते, आभासोप्यभिमन्यते, पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामि इति वृथा यथा। व्यर्थ ही क्या करता है, पुत्र दारा अर्थात अपना पुत्र है, अपनी पत्नी है, वो जब उनको जब पीड़ा होती है तो ये क्या हो जाता है, स्वयं तपने लगता है, तपा भी है, तपा में मुझे पीड़ा हो रही है, क्यों हो रही भाई, आपको पीड़ा हो रही है इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, होता है ना, बच्चे को बुखार आ गया, भयंकर बुखार आ गया तो माँ भी क्या है, उसको भी कुछ न कुछ होने लगता है, क्यों, उसके साथ तादाद में है, ये मेरा है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, ऐसा वो मानती, इसी से मेरा सब कुछ है, उसके साथ इतना तादाद में हो जाता है, उसको कुछ होता है तो इसको भी कुछ होने लगता है। पुत्रदारेषु तप्यत्सु, जब पुत्र संतप्त हो गया, पत्नी संतप्त हो गई, तो कहता है तपामि, मैं तप रहा हूं, यदि वृथा, व्यर्थ ही बोलता है, वास्तविक देखा जाए तो उसके साथ कोई संबंध नहीं है, किंतु तादात्म्य करके व्यर्थ ही क्या है, तप रहा है, तपना नहीं चाहिए था, मन्यते, व्यर्थ ही बोलता है, पुरुष तद्वत, जैसे पुरुष ऐसा व्यर्थ क्या है, जब पत्नी पुत्र तपने लगते हैं तो उसके तपन से ये अपने आप को कहता, मैं भी तप रहा हूं आपके कारण, आप सुखी है तो मैं सुखी हूं, आप दुखी है तो मैं दुखी हूं, बस आप खुश रहे, क्या है, आप खुश रहे तो मैं खुश हूं, जब आप दुखी रहेंगे तो मैं भी दुखी हो जाता हूं, क्यों भाई, उसके साथ तादात में संबंध है, ये मेरा अपना है, मेरे से अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए निमंत्रण आया, छोटे भाई को निमंत्रण आया, छोटे भाई ने कहा बड़े भाई को, भैया निमंत्रण नहीं आया आपको, अरे तुमको आया और मुझको आया, क्या एक ही बात है, हम दोनों अलग थोड़ो ना, किंतु एक को भी ना बुलाए दो तब तो गुस्सा आ जाएगा, क्यों, अरे हमको नहीं, कम से कम मेरे छोटे भाई को तो बुलाते, अब मान लीजिए बुला लिया तो क्या कहता है, अरे आपको बुला रहा मुझे बुलाना कोई अलग थोड़ो ना, हम दोनों एक है, मतलब कितना तादाद में है, मान भी हो गया तो छोटे भाई का मान हो गया तो बड़ा भाई मानता कि नहीं मेरा मान हो गया, मेरे भाई को छोटे भाई को बुलाया तो मुझे बुलाया, मुझे मान मिल गया, अथवा बड़े भाई को बुलाया तो छोटे भाई बोलता कि हाँ, अरे जब मेरे बड़े भाई को बुलाना मतलब मुझे बुलाना है, एक ही बात है, तादाद में उसके मान में अपना मान समझता है, उसके अपमान में अपना अपमान समझता है। ऐसा क्या है, वो पुरुष कहता है, इसी तरह चिदाभास भी बोलने लगता है, कहता है वो चिदाभासोपि अभिमन्यते, चिदाभास भी कहने लगता है। पुत्रदारेषु इति एवं अविवेक दशायां चिदाभासस्य भ्रांत्या ज्वरं प्रदर्शय, कहते हैं इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में चिदाभास में क्या है, भ्रांति के कारण क्या है, उसमें ज्वर की प्रतीति होती है, ये दिखा करके विवेक दशायां तद अभावं दर्शयति, कि तो जब विवेक हो जाता है उस विवेक दशा में, विवेक अवस्था में क्या है, वो जो भ्रांति है, वो ज्वर है, क्या है, उसका अभाव हो जाता है। विवेक दशा में वो ज्वर रहता नहीं है, उसको दिखाने जा रहा है 34वें श्लोक के द्वारा। विविच्य भ्रांतिमुज्झित्वा स्वमप्य गणयन् सदा चिंतयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरं अनुस्वं ज्वरेत् विविच्य भ्रांतिम उज्जित्वा स्वम अपि अगणयन सदा। जब क्या करता है, विविच्य मतलब चिदाभास उस कूटस्थ को क्या है, विवेक के द्वारा ये कूटस्थ मैं हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर त्रय तीनों शरीर मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, कुटस्थ हूं। ये चिदाभास जिस समय में ये शरीर मैं नहीं हूं और कुटस्थ मैं हूं, ऐसा विचार के द्वारा जब जान लेता है तो क्या करता है, अलग करके शरीरादियों को अलग करता है, कैसे, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा। अरे शरीर का क्या है, स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप किसके साथ मेल खाता है, कुटस्थ के साथ खाता है, शरीर के साथ मेरा स्वरूप का कोई मेल खाता नहीं है, मेरे लक्षण और शरीर के लक्षण में कोई मेल खाता नहीं है, मेरे लक्षण क्या है, कुटस्थ के साथ मेल खाते हैं, इसका मतलब क्या है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, कुटस्थ हूं। लक्षणों को देखता है, कुटस्थ का लक्षण देखता है और अपना भी वो लक्षण देखता है। कुटस्थ प्रकाश रूप है तो मैं भी प्रकाश रूप हूं, कुटस्थ जो है, कुटस्थ से मेरा कोई अलग स्वरूप नहीं है और ये इसका स्वरूप तो अलग है। जैसे उदाहरण के लिए, जो बचपन वाला जो शरीर था वो तो चला गया, कि तो मैं जो चिदाभास तो आज भी तो हूं मैं, यदा कदाचित अभी आज वर्तमान में हम अपने को जीव ही मान लीजिए, कोई बात नहीं, तो मैं जीव हूं, चलिए कोई बात नहीं, किंतु मैं शरीर नहीं हूं ये तो निश्चित है। कैसे, जो बचपन वाला शरीर तो आज नहीं ना, कि तो मैं तो जीव हूं, युवावस्था वाला शरीर है जो है वो भी मैं नहीं हूं, वो तो चला गया किंतु आज वर्तमान मैं हूं, वृद्धावस्था आ गई ये भी चली जाएगी, हाँ उस समय भी मैं जीव हूं, मतलब मुझ जीव की उपस्थिति है क्या नहीं, भूतकाल में भी थी और आज में भी, आज भी है और कल भी रहेगी, और कुटस्थी की भी यही स्थिति है। मतलब दोनों की, दोनों का स्वरूप क्या हो गया, एक हो गया, जीव का और कुटस्थ का एक हो गया। एक होने से क्या हो गया, हम तो एक ही हो गए ना, और इसका स्वरूप अलग है क्योंकि तू चला जा रहा है, बचपन वाला चला गया शरीर कि तू मैं कोई जस की तस हूं, युवा अवस्था वाला शरीर चला गया मैं तो आज भी हूं। मतलब ये जाने वाले हैं, मैं तो इनको देखने वाला हूं, इसका मतलब ये शरीर मैं नहीं हूं। वो क्या करता है, इस तरह का चिंतन करता है, चिंतन करके अपने आप को अलग कर देता है। जैसे ही अलग कर देता है तो फिर दूसरे के शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अपने शरीर के लिए भी कष्ट उठाता नहीं, वो तपता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं अरे चलो हम किसी के लिए करिया ना करिए, तो हमें तो अपना गुजारा करना है ना, पेट का ये पेट हमारा पेट है, हम दूसरे को नहीं खिलाएंगे तो मेरे अपने पेट का तो मुझे गुजारा करना पड़ेगा ना, तो काम के लिए जाता है कि तो ज्ञानी कहता ये भी करता नहीं, इस शरीर की गुजारे के लिए भी कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है इस शरीर ने, इस चिदाभास ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसको आज क्या है, इसको फल आज मिलना है। आज इस शरीर के लिए जो भोग है वो भोग तो मैं बैठा रहूं तभी मिलने हैं, नहीं बैठने के बाद तो कुछ मिलेगा वो तो बात अलग, पर नहीं करने पर भी वो मिलना है। मेरे तकदीर में होगा भोजन तो मुझे मिलेगा, मेरे तकदीर में होगा कपड़ा पहनने के लिए तो मुझे कपड़ा मिलेगा, यदि मेरे तकदीर में नहीं है चाहे कितना भी हाथ पैर हिलाओ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक महात्मा जी जो है वो सोचे कि देखता हूं ये नर्मदा मैया मुझे खिलाती है कि नहीं, और वो नर्मदा का जो परिक्रमा मार्ग है उस परिक्रमा मार्ग में एक आदिवासियों की एक भीलों की एक बस्ती आती है उस जंगल में, तो वो पेड़ पर चढ़ गया महात्मा, और नीचे रहेंगे तो कोई कहेगा लो खा लो, अब देखना है कि मुझे नर्मदा मैया खिलाती है कि नहीं देखना है, एक विश्वास की बात है। वो चढ़ गए पेड़ के ऊपर, तो यात्री तो कोई दिखा नहीं, चलो कोई गृहस्थ यात्री होता तो वो बोलता महाराज कुछ खाइए, आपको तो भूखे होंगे लीजिए, किंतु यात्री भी नहीं गए। अचानक जो वो भील क्या करते हैं, जो भी यात्री आते हैं उसका सामान लूटते, उनका वो धर्म है, परंपरा है उनकी, उन्होंने वो अपने को क्या है वो इस जब अर्जुन को लूट लिया था हाँ तो उनकी परंपरा को निर्वाह करते हुए हम उन परंपरा के मानते, तो उनका नियम है जो भी यात्री आता है उसके पास जो खाने पाने की चीज होती है वो कपड़ा लाता होता है ले लेते हैं, लेने के बाद उसके पास यदि खाने के लिए नहीं वही चोर क्या करते उसको खाने के लिए भी देते हैं, वो उनका एक नियम है, ले तो लेते हैं उससे पर उसके पास यदि खाने के लिए नहीं तो अपने ओर से खिलाते भी है, मानी सब ले लेना और उसको अभी वर्तमान में अभी भूख लगी है उसको खिला देते हैं और खिला करके कहते आगे चले जाना, तो इतना वो करते हैं। तो वो ऊपर चढ़े भी वो महात्मा जी, तो चलते चलते वो भील आ गए, अब उनके हाथ में बाण होता है धनुष बाण, वो शिकार करते हैं ना, अचानक नजर गई ऊपर, अरे ये महात्मा ऊपर चढ़ा है इसका मतलब ये अपने पास कुछ है इसका, इसलिए हम लोगों के डर से ऊपर चढ़ गए चढ़ गए। बोले उतर नीचे आ जा, बोले नहीं आऊंगा, नीचे आता है क्या, नहीं तू नहीं आऊंगा, देखा अभी हम मारेंगे फिर, और तान दिया दोनों से, अब डर गया महात्मा, बोले नहीं मैं नीचे आता हूं, आ गया नीचे, सब जांच कर ली कुछ नहीं मिला, बोले कुछ खाया पिया कि नहीं? बोले नहीं खाया। लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो वो भील कहते हैं, तुम खाओगे या नहीं खाओगे? क्या मारोगे? मार खाना है। अब मार किसको अच्छी ले? अब मार के भय से उसने चुपचाप वो प्रारब्ध में है तो कहीं से भी परमात्मा क्या करता है, वो भेज देते जबरन उसके मुंह में ठुसा देता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे प्रारब्ध में होगा, हम नहीं चाहने पर भी उसको ठुकरा नहीं सकते, और प्रारब्ध में नहीं हो तो चाहे कितने लाख प्रयत्न करें वो हमारे पास आने वाला नहीं है। तो ज्ञानी इस शरीर के लिए अपने आप को तपाता नहीं है, वो जान लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो कुठस्थ आत्मा हूं, और इस शरीर के लिए जो आवश्यक चीज है, जिस परमात्मा ने तैयार किया शरीर, उस शरीर की रक्षा करने का चिंता तो उसी को होनी चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, मैं तो साक्षी भाव में उसको देखता रहूंगा। तो वो क्या है, चुपचाप शांत बैठते हैं, इस शरीर के पीछे संतापित होते नहीं है, यही कह रहे हैं। कहता है विविच भ्रांतिम उज्जित्वा, क्या है विवेक के द्वारा भ्रांतिम उज्जित्वा, अपनी भीतर की भ्रांति को हटा देता है। क्या भ्रांति? ये मैं शरीर हूं, ये भ्रांति है। इस बात को क्या करता है, इस भ्रांति को हटा देता है। कैसे? विवेक ज्ञान के द्वारा। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर तो आने जाने वाला है, और इस शरीर को तो मैं देखने वाला हूं, वो ऐसा विचार करता है। और मैं कुटस्थ चैतन्य मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जड़ है, और इस शरीर को जड़ शरीर को प्रकाशित करने वाला मैं हूं, ऐसा विचार करके क्या करता है, वो कुटस्थ के साथ अपना संबंध बना लेता है। मतलब ये कुटस्थ मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा करके अलग हो जाता है, जान करके चिंतयन, ऐसा चिंतन करता है वो। साक्षिणम कस्मात शरीरम अनुसंज्वरित, जब वो ऐसा चिंतन करता है साक्षी रूप में अपने आप को, मैं ही साक्षी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा जब चिंतन करता है तो कस्मात शरीरम अनुसंज्वरित, किस लिए वो शरीर के लिए जो है कष्ट उठाएगा? वो दूसरी की बात छोड़, अपने शरीर के लिए भी वो कष्ट नहीं उठाएगा, वो शांत बैठेगा। टीका देख लीजिए, विविच्छेति इति चिदाभासः कुटस्थम स्वात्मानम शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा। वो चिदाभास जो है कुटस्थम स्वात्मानम, वो चिदाभास कुटस्थ को ही अपना स्वरूप क्या है विचार के द्वारा जान लेता है कि शरीर मैं नहीं हूं, अपितु कौन हूं मैं? मैं कुटस्थ हूं, ये विचार के द्वारा जान लेता है। ऐसा जान करके क्या है, शरीराणि च विविच्य, उस शरीर को क्या करता है, अलग कर देता है विचार के द्वारा। भेदेन ज्ञात्वा, अर्थात भेद रूप से वो जानता है, ये अलग है, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। भेद ज्ञान क्या है कि ये जड़ है और मैं चेतन हूं, ऐसा वो जान लेता है। भेद ज्ञान उसको नजर आता है, अनुभव करता है, जान करके तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य रूपम इति मन्यते। और ये जान करके क्या, तत्सर्वम वास्तवम, वह क्या करता है जो चिदाभास है कि वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है, कुटस्थ है, मेरा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। इति मन्यता, इति उक्ताम भ्रांतिम परित्यज्य, ऐसा विचार करके जान करके क्या करता है, अपनी भीतर की जो पूर्व भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, इस भ्रांति को क्या करता है, परित्यज्य, उसको त्याग देता है। स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेन, स्वस्मिन् अपि आदरम अकुर्वन। अब मैं चिदाभास भी नहीं रहा, जब शरीर मैं नहीं रहा, ये तो अलग हो गया, शरीर तो मैं रहा ही नहीं, अब मैं चिदाभास भी नहीं हूं, मैं कौन हूं? कुटस्थ हूं। तो अपने अभाव ज्ञान के द्वारा क्या है, उसको डर नहीं लगता है, वही कह रहे स्वस्य अभाव रूपम रूपत्व ज्ञान है ना। अब मैं तो चिदाभास रहा नहीं, मैं तो कौन हूं? कुटस्थ हूं। जब ऐसा हो जाता है स्वस्मिन अपि आदर अनादर क्या है स्वस्मिन नापि आदरम कुरुवन। अब वो चिदाभास अपना आदर करता नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि मैं जीव हूं, ये बात नहीं बोलता है, क्या करता है, मैं जीव हूं इस बात को अनादर करके मैं कुटस्थ हूं ये मानता है। जैसे एक स्त्री का जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद अब अपने पिता के सरनेम का क्या करती है, अनादर करके अपने पति का सरनेम लगाती है अपने पीछे, मतलब अपने पति का सरनेम क्या है लगाती है, क्या करके, अपने पिता का सरनेम का अनादर करके पति का सरनेम लगाती है। अब मैं कौन हूं, मान लीजिए वो कोई वर्मा होगी तो वो आप किसी शर्मा के कुल में गई तो वो क्या कहती है, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा, तो उस नाम का अनादर करके अब पति को नाम को जोड़ दिया, अब मैं उनकी हूं। इसी तरह मैं अब चिदाभास नहीं हूं, मैं कौन हूं, तो मैं कुटस्थ हूं, अपने नाम का अनादर करके अपने आप को मैं कुटस्थ के रूप में वो क्या है जान लेता है, मानता है, अपना नामकरण कुटस्थ के रूप में स्वीकार करता है। अकुर्वन स्वस्य निजम रूपम ज्वरादि रहितम साक्षिणम सदा चिंतयन। तो अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को क्या है, ज्वरादियों से रहित मान करके, मेरा स्वरूप ज्वरादि नहीं है, मेरा स्वरूप शरीर भी नहीं है और शरीर में होने वाली जो ज्वर है वो भी मेरा नहीं है। साक्षिणम सदा चिंतयन, वो साक्षी का क्या है, चिंतन करते हुए क्या करता है, तो कस्मात शरीरम अनुसंज्वरेत, जब ऐसा चिंतन करेगा तो किस कारण से उस शरीर के लिए वो अपना कष्ट उठाएगा, मेहनत उठाएगा, अर्थात नहीं मैंने उठाएगा, वो छोड़ देगा। ज्वरवत शरीरम अनुसृत्य स्वयं कस्मात् स्वंज्वरेत, कहता है ज्वरवत शरीरम, ये ज्वर वाला जो शरीर है उस ज्वर वाले शरीर के साथ अनुसृत्य स्वयं कस्मात् ज्वरेत, उसका अनुसरण करके क्यों उसके पीछे जो है पीड़ित होगा, यदि इसका अनुसरण करेंगे शरीर का तो क्या हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा। तो वो कहते हैं वो ज्ञानी जिसने विवेक किया वो शरीर के पीछे जाकर के क्यों अपने आप को तपाएगा, अर्थात नहीं तपाएगा, न संजरित इत्यर्थ, अर्थात वो अपने आप को पीड़ा नहीं देता है। चलिए आगे के विषय में कल कर लेते हैं। हरिओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।